नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत ईरान नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम भौगोलिक स्थिति। आधुनिक ईरान प्राचीन काल के महान पर्शियन साम्राज्य का एक कंकाल मात्र रह गया है। 1935 ईस्वी में रजा शाह ने इसका नाम पर्शिया से बदलकर ईरान रख दिया। इसका वर्तमान क्षेत्रफल 6,28,000 वर्ग मील एवं आबादी 2 करोड़ के ऊपर है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर एवं रूस, दक्षिण में ईरान की खाड़ी, पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तथा पश्चिम में टर्की तथा इराक स्थित हैं। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ईरान का सामरिक एवं राजनीतिक महत्व प्राचीन काल से ही अत्यधिक रहा है। आधुनिक काल में पेट्रोल गैस के उत्पादन ने इसके आर्थिक महत्व को आसमान पर पहुँचा दिया है। ईरान ने अपना विशिष्ट स्वातंत्र्य विशाल ब्रिटिश, रूसी एवं ऑटोमन साम्राज्य के थपेरों में सुरक्षित रखा। ईरानवासियों ने इस्लाम की बाढ़ से अपने आर्य नस्ल एवं जरथुस्ट के धर्म की भी रक्षा की। इस प्रकार ईरान की सभ्यता, जिसका आरंभ 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ था, अबाध गति से प्रगति करती रही और यह कभी भी पड़ोसी विशाल साम्राज्यों द्वारा पूर्ण रूपेण उदरस्थ नहीं हो सकी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ईरान में सर्वप्रथम 6 सदी ईस्वी पूर्व में काइरस ने अचामनी राजवंश की नींव डाली तथा एक महान साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य सिंधु नदी से भूमध्य सागर तक विस्तृत हो गया और ग्रीस से इस साम्राज्य ने कई टक्करें ली। अंत में 331 ईस्वी पूर्व में महान सिकंदर ने इसे जीतकर अपने सेनापति सेल्यूकस के हवाले कर दिया, परंतु दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में ग्रीक सत्ता का अंत हो गया और मिथ्रोडेट्स ने पर्शियन राजवंश कायम किया। पर्शियन राजवंश का अंत के बाद ईरान का स्वदेशी राजवंश शाशानी वंश ने 4 सदियों तक शासन किया। इसके हाथ से सत्ता इस्लामी अरबों के हाथ में आई और बगदाद में अब्बासी खलीफाओं का केंद्र स्थापित हुआ। ईरान के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिन पर इस्लामी सरदारों का शासन होने लगा। तत्पश्चात ईरान पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और 1258 ईस्वी में मंगोल सेनापति हलाकू ने बगदाद को धूल धूसरित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ईरान में एक लंबे अरसे तक अराजकता रही, जिसका अंत इस्माइल प्रथम ने किया और एक नए शफावी राजवंश की स्थापना की। इस प्रकार टर्की के ऑटोमन राजवंश के साथ ही शफावी राजवंश का भी विकास हुआ तथा इन दोनों में कई टक्करें भी हुई। अब्बास प्रथम इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसने यूरोपीय देशों से संपर्क स्थापित किया। 17वीं सदी में ही पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच एवं फ्रांसीसी कोठियां ईरान में स्थापित हुई तथा ईरान की खाड़ी में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ईरान में अराजकता आई एवं सफावी वंश की शक्ति नष्ट हो गई। ऐसी अवस्था में 1797 ईस्वी में अका मोहम्मद ने गजर राजवंश की नींव डाली। इस राजवंश को 19वीं सदी में पश्चिमी साम्राज्यवाद का सामना करना पड़ा तथा जिसके कारण ईरान को काफी क्षति पहुंची। 19वीं सदी में ईरान की स्थिति। 19वीं सदी में ईरान पर विस्तारवादी रूस का पंजा बढ़ने लगा। ब्रिटेन ने नवोदित भारतीय साम्राज्य के रक्षार्थ ईरान की खाड़ी में अपना प्रभाव विकसित किया और इस क्षेत्र के कई शेखों के साथ संबंध स्थापित किए। वास्तव में ईरान पर किसी दूसरे देश का कब्जा ब्रिटेन को असह्य था, फलतः ब्रिटेन एवं रूस दोनों इस क्षेत्र में आकर टक्कर लेने लगे और इसी रस्साकसी के कारण स्वतंत्र बना रहा। परंतु किसी तीसरी शक्ति के आने से ये दोनों प्रतिस्पर्धी आपसी समझौता कर लेते थे, जिससे ईरान को सर्वदा चोट पहुंचती थी। ऐसी ही अवस्था 1813 ईस्वी में आई, जब नेपोलियन से आक्रांत होकर ब्रिटेन ने रूस के साथ सहयोग की नीति अपनाई। फलतः रूस ने अक्टूबर 1813 ईस्वी में ईरान को गुलिस्तान की संधि करने पर मजबूर किया, जिसके अनुसार रूस को बाकू, शाकी, दरबेंद, शिरवान, काराबाग तथा तालिस का एक हिस्सा प्राप्त हुआ और ईरान ने रूस अधिकृत जॉर्जिया, दगिस्तान, मिग्रेलिया और अवखाशिया पर से अपने हकों का परित्याग कर दिया। इसके साथ ही रूसी जहाजी बेड़े को कैस्पियन सागर में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह रूस ने एक विशाल भूखंड प्राप्त किया। इससे उसकी साम्राज्य लिप्सा में वृद्धि हुई तथा 1828 ईस्वी में उसने पुनः ईरान के साथ युद्ध किया, जिसका अंत तुर्कोमनाइचाई की संधि द्वारा हुआ। कृपया इसे फिर से सुन लें, जिसका अंत तुर्कोमनाइचाई संधि के द्वारा हुआ। इस संधि द्वारा रूस की सीमाएं अरास नदी तक पहुंच गई और ईरान में रूस को अनेक आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं एवं बाह्य राज्य क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त हुए। इस तरह रूस ने ईरान पर अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित कर लिया। इस काल में ब्रिटिश कूटनीति ईरान में प्रभाव स्थापित करने में असफल रही तथा रूस का प्रभाव सर्वोपरि रहा। रूसी प्रभाव में आकर ईरानी फौजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करना आरंभ किया और 1856 ईस्वी में हेरात पर कब्जा कर लिया। इससे ब्रिटिश भारतीय शासकों ने भयानक खतरा महसूस किया और उन्होंने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया। इसमें ईरान की हार हुई और पेरिस की संधि द्वारा ईरान को अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ा तथा अफगानिस्तान की स्वाधीनता को मान्यता देनी पड़ी। इस काल में रूस केंद्रीय एशिया में निरंतर प्रगति कर रहा था। शनै शनै बुखारा, खीव, कोकंद, भर्व तथा पंचदेह रूसी छत्रछाया में चले गए। अब रूस तथा ईरान की सरहद कैस्पियन सागर के पूर्व में भी टकराने लगी। रूस की इस विद्युत प्रगति से ईरान एवं ब्रिटिश भारत दोनों को खतरा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही कदम उठाए और 1885 ईस्वी में पंचदेह में युद्ध होते होते बचा, परंतु इससे अफगानिस्तान सुरक्षित रह गया। इस काल में ईरान में आर्थिक सुविधाओं के लिए ब्रिटेन तथा रूस में होड़ लगी रही। 1872 ईस्वी में ब्रिटेन ने रेलवे, यातायात एवं खनिज द्रव्यों के संबंध में अनेक सुविधाएं प्राप्त की, परंतु रूसी दबाव के कारण उसे रद्द कर दिया गया। शाह नसीरुद्दीन ने 1873 ईस्वी में यूरोप का दौरा भी किया तथा पाश्चात्य सभ्यता से अत्यंत ही प्रभावित हुआ। 1889 ईस्वी में उसने ब्रिटेन को एक बैंक खोलने एवं तंबाकू व्यापार का एकाधिकार दिया, परंतु तंबाकू का एकाधिकार शीघ्र ही रद्द करना पड़ा तथा शाह को एक क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। रूस ने भी एक बैंक खोलने और रूसी सरहद पर अजरबैजान जिले में रेलवे लाइन निर्माण का अधिकार प्राप्त किया। 1896 ईस्वी में शाह नसीरुद्दीन को कत्ल कर दिया गया तथा उसका वारिस मुजफ्फरुद्दीन नया शाह बना। इस काल में ईरान की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और 1900 ईस्वी में शाह ने रूस से 2,80,00,000 रूबल कर्ज लिया। इसकी अदायगी के लिए ईरान के आयात कर निश्चित कर दिए गए। इस तरह रूस का प्रभाव ईरान पर पूर्ण रूपेण फैल गया और 20वीं सदी के आरंभ में ईरान रूस के बढ़ते प्रभाव का शिकार हो गया। ईरान में राजनीतिक अशांति। 20वीं सदी के आरंभ में ईरान की राजनीति में अनेक परिवर्तन आए। प्रथमतः ईरान के राष्ट्रवादियों को अपने राष्ट्र के अधःपतन की ओर ध्यान गया तथा उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। वास्तव में 19वीं सदी में ही ईरान के कई प्रगतिवादी शासकों ने राष्ट्रवादी कदम उठाए थे। 19वीं सदी के प्रथम चरण में ही ताब्रीज एवं तेहरान में छापाखाना स्थापित हो गया था। उत्तर पश्चिमी ईरान में ताब्रीज के सूबेदार अब्बास मिर्जा ने छापाखाना खुलवाया था तथा नवयुवकों को उच्च शिक्षा के लिए यूरोप भेजा था। अतः ताब्रीज आधुनिक विचारों का केंद्र बन गया था। यूरोपीय मिशनरियों ने ईरान में शिक्षणालय कायम किए थे तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य का ईरान में प्रचार किया। पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन ने ईरानी नवयुवकों को अपने देश की दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया। 1852 ईस्वी में दारुल फनून की स्थापना से नई शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त देश में धर्म सुधार के लिए बाबी आंदोलन एवं अखिल इस्लामियत के आंदोलन हुए। अखिल इस्लामियत के जन्मदाता जमालुद्दीन अफगानी को शाह नसीरुद्दीन ने आमंत्रित किया, परंतु उसके अनुयायियों में इतनी तीव्रता से प्रगति हुई कि अंत में शाह को उसे ईरान से बहिष्कृत करना पड़ा। परंतु उसने अपने आंदोलन द्वारा ईरानवासियों में एक नवीन जागृति एवं उत्साह भर दिया। इसके अतिरिक्त लंदन से ईरानी देशभक्तों ने मालकम खां के नेतृत्व में एक अकपत्र कानून निकालना आरंभ किया, जिसने ईरान की समस्याओं पर दृष्टिपात किया जाने लगा। इस दिशा में हाजी नजीम अब्दी नामक उलेमा के प्रयास भी सराहनीय रहे। वास्तव में ईरान के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दोषपूर्ण थी तथा उसमें मौलिक सुधार अपेक्षित था, अतः असंतोष भीतर ही भीतर उबलता गया। परंतु शाह मुजफ्फरुद्दीन स्वयं प्रतिक्रियावादी था तथा उसने पीछे रूसी फौज थी और राष्ट्रवादियों को शांतिपूर्ण सफलता मिलना असंभव था। 1906 ईस्वी की ईरानी क्रांति। 1905 ईस्वी में रूसी प्रभाव में सामयिक न्यूनता आई और जिसके कारण राष्ट्रवादियों को अवसर प्राप्त हुए। रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय एवं रूस की फरवरी क्रांति ने ईरान पर भी अपना प्रभाव डाला। ईरान के राष्ट्रवादियों ने कूम नामक स्थान में एकत्र होकर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री अयानादोला की बर्खास्तगी की मांग की। शाह ने उसे हटाने का वचन दिया, परंतु आंदोलनकारियों के वापस लौट जाने पर उसने दमनकारी रुख अख्तियार किया। फलतः तेहरान के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और हजारों आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश दूतावास में एकत्र होकर एक सभा की। अंत में शाह को उनके सामने झुकना पड़ा और अक्टूबर 1906 ईस्वी में ईरान की प्रथम प्रतिनिधि सभा मजलिस का उद्घाटन हुआ। मजलिस ने एक जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया जिसके द्वारा वैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। एक द्विसदनात्मक संसद रखी गई जिसमें सीनेट एवं मजलिस नाम के दो सदन की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री को संसद के प्रति उत्तरदायी रखा गया। विचारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता को भी संविधान में स्थान दिया गया। इस तरह से ईरान में महान राजनीतिक परिवर्तन आया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इसी समय नया रुख अपनाया जिससे ईरान में नई समस्याओं का अभ्युदय हुआ। आंग्ल रूसी संधि और ईरान 1907 ईस्वी। 20वीं सदी के आरंभ में जर्मन खतरे के कारण यूरोपीय राजनीति में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। 1895 ईस्वी में रूस एवं फ्रांस ने एक संधि कर ली और 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने परंपरागत दुश्मनी को खत्म कर दोनों ने एक आपसी समझौता कर लिया। ऐसी अवस्था में रूस तथा ब्रिटेन ने भी आपसी वैर के अंत की योजना बनाई और 31 अगस्त 1907 ईस्वी को दोनों देशों के बीच तिब्बत, अफगानिस्तान एवं ईरान के मामले के समझौते हुए। अफगानिस्तान एवं तिब्बत में स्थिति पूर्ववत रहने दी गई, परंतु ईरान को प्रभाव क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इसके अनुसार रूस को उत्तरी ईरान का हिस्सा प्रभाव के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। जहां रूस आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकता था, वहां ब्रिटेन को दक्षिण पूर्वी ईरान प्रभाव क्षेत्र के रूप में प्राप्त हुआ और बीच का भूभाग दक्षिणी पश्चिमी ईरान एक त्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया। इस तरह रूस और ब्रिटेन ने आपसी वैरभाव का अंत कर दिया। इसमें ईरान के शाह का परामर्श भी नहीं लिया गया। इसके फलस्वरूप रूस का प्रभाव पुनर्स्थापित हो गया तथा इराक के राष्ट्रवादियों को घोर निराशा हुई। शीघ्र ही रूस ने ईरान में प्रतिक्रिया को प्रश्रय दिया और ईरान दुर्गति के चक्र में पड़ गया। ईरानी प्रतिक्रिया। रूस ने ब्रिटेन की ओर से निश्चिंत होकर ईरान में प्रतिक्रियावादियों का संगठन किया। जनवरी 1907 ईस्वी में शाह मुजफ्फरुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा नए शाह मोहम्मद अली ने रूस का सहारा पाकर वैधानिक सुधारों की अंत की योजना बनाई। शीघ्र ही नए शाह का मजलिस से झगड़ा होने लगा। इस समय देश में राष्ट्रीय भावनाओं का तेजी से विकास हो रहा था। पत्रिकाओं का काफी प्रचलन हो रहा था। अतः 1908 ईस्वी के मध्य में शाह ने रूसी फौज की मदद से संसद भवन को नष्ट कर सदस्यों को बाहर निकाल दिया। अब राष्ट्रवादियों ने यत्र तत्र विद्रोह कर दिया। टर्की में तरुण तुर्कों की सफलता ने उन्हें जोश से भर दिया और वे डटकर शाह का मुकाबला करने लगे। दक्षिण में बख्तियार कबीले के नेताओं ने विद्रोह का पक्ष लिया। परिणाम यह हुआ कि जुलाई 1909 ईस्वी में तेहरान पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और शाह ने रूसी दूतालय में भागकर शरण ली। मजलिस ने शाह को गद्दी से उतार दिया और उसके नाबालिग पुत्र अहमद शाह को गद्दी पर बैठाया तथा असद उल मुल्क नामक एक योग्य राजनीतिज्ञ उसका संरक्षक बना। परंतु इस काल में रूस एवं ब्रिटेन में सहयोग की नीति चल रही थी। 1911 एक ईस्वी में ही डीआरसी नामक एक ऑस्ट्रेलियन ने ईरान में उत्तरी भाग को छोड़कर अन्य हिस्सों में तेल उत्पादन का अधिकार प्राप्त किया था। 1908 ईस्वी में तेल का उत्पादन आरंभ हुआ और एंग्लो ईरानी तेल कंपनी का जन्म हुआ। इस कंपनी ने शाह को 16% लाभांश देना तय किया। इस प्रकार रूस तथा ब्रिटेन ईरान के शोषण में रत थे, अतः ईरान देशभक्तों ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जर्मनी की ओर अपना रुख किया। जर्मनी इस क्षेत्र में अपने संबंधों को तेजी से विकसित कर रहा था। 9 अगस्त 1911 ईस्वी में एक रूसी जर्मनी समझौते के अनुसार जर्मनी को बगदाद रेलवे की शाखाएं उत्तरी ईरान में स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मजलिस ने एक अमरीकी अर्थविशेषज्ञ मैर्गन सुस्टर आर्थिक सुधार के हेतु बुलाया, परंतु यह अधिक दिनों तक टिक नहीं सका और रूसी दबाव के कारण 1911 ईस्वी के अंत तक इसे ईरान छोड़ देना पड़ा। सितंबर 1911 ईस्वी में रूस ने पुनः हस्तक्षेप किया और संसद एवं मंत्रिमंडल को भंग कर दिया तथा राष्ट्रवादियों को जेल में डाल दिया गया तथा ईरान पूर्णतया रूसी एवं ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। मजलिस 1914 ईस्वी की जुलाई में शाह की ताजपोशी के इंतजाम के लिए बुलाई गई, परंतु इसी समय महायुद्ध का श्री गणेश हो गया। ईरान भी एक युद्ध क्षेत्र बन गया। प्रथम महायुद्ध और ईरान। जिस समय प्रथम महायुद्ध का आरंभ हुआ उस समय ईरान में रूसी तथा ब्रिटिश फौज भरी हुई थी। उत्तरी ईरान में रूसी फौज एवं दक्षिणी पूर्व क्षेत्र के तेल उत्पादन के रक्षार्थ ब्रिटिश फौज तैनात थी। 1914 ईस्वी में ही ब्रिटेन ने एंग्लो ईरानी कंपनी के अधिकांश हिस्सों को खरीद लिया था। इनके अतिरिक्त इराक का कोशक ब्रिगेड रूसी अफसरों द्वारा संचालित था तथा एक दूसरी सैन्य वाहिनी स्वीडिश अफसरों द्वारा संचालित थी। इस तरह इन दोनों सेनाओं पर वैदेशिक प्रभाव कायम था। इनके साथ दूरवर्ती क्षेत्रों में कबीले स्वतंत्र थे एवं अस्त्र शस्त्र सन्नद्ध थे। ऐसी अवस्था में ईरान ने तटस्थता की घोषणा की, परंतु यह तटस्थता सिर्फ नाम मात्र की रही। उत्तर पश्चिम ईरान में तुर्क एवं रूसी फौजों में शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। ऐसी अवस्था में ईरान के देशभक्त शासकों ने जर्मनी से संबंध बढ़ाए। 1915 ईस्वी में जर्मन राजदूत वॉन रियूस ने ईरानी सरकार से एक गुप्त संधि की तथा अस्त्र शस्त्र एवं अर्थ देने का वचन दिया और ईरान की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का भी वादा किया। इसके साथ ही उसने स्वीडिश सैन्य वाहिनी को भी अपनी ओर मिला लिया और ईरानी कबीलों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। इसके लिए जर्मनी से कई सैनिक मंडल भेजे गए। इसमें क्लाइन मंडल, करमानशाह क्षेत्र में जुगमेर मंडल, इस्फान और करमान में तथा बायक मंडल बलूचिस्तान में भेजा गया। इसके अतिरिक्त जर्मन व्यापारिक दूत वास्मस ने दक्षिण पूर्वी ईरान में बख्तियारी, काशकाई एवं तंगिस्तान कबीलों में विद्रोह फैला दिया। फलतः इस क्षेत्र में ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अनेक सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। अतः ब्रिटेन तथा रूस ने ईरान को कड़ी चेतावनी भेजी और रूसी फौजें नवंबर 1915 ईस्वी में तेहरान की ओर बढ़ी। अब देशभक्त नेताओं ने इस्फहान में राजधानी बनाने का विचार किया और तेहरान को खाली कर दिया, परंतु शाह ने रूसी ब्रिटिश दबाव के कारण तेहरान में ही राजधानी बनाए रखा। परंतु जर्मन प्रभाव में आकर करमान शाह ने निजामुस की अध्यक्षता में एक पृथक ईरानी सरकार की स्थापना दिसंबर 1915 में की तथा इस सरकार ने जर्मनी के साथ एक संधि कर ली। जर्मनी ने सैनिक संगठनार्थ एक सैन्य मंडल भी नई सरकार के पास भेजा, परंतु जर्मनी के इन प्रयासों का सर्वाधिक असर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हुआ। यहां तेल खानों के रक्षार्थ ब्रिटेन ने मार्च 1916 ईस्वी में सर पर्सी साइकस की अध्यक्षता में सेना का संगठन किया। इसका नाम दक्षिणी पर्शियन राइफल्स था। इस सेना ने खानाबदोश कबीलों पर आक्रमण किया तथा 1917 के अंत तक उसने इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर दी। 1917 ईस्वी में ही ब्रिटेन ने स्वीडिश सैन्य वाहिनी को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1917 ईस्वी में जब रूस में क्रांति हुई तो ब्रिटेन ने उत्तरी ईरान पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार 1917 ईस्वी के अंत तक ब्रिटेन पूर्ण रूप से ईरान पर छा गया तथा जर्मनी के प्रयास निष्फल गए और अधिकांश जर्मन सैन्य अधिकारी कैद कर लिए गए। परंतु रूस से युद्ध से मुख मोड़ लिया और नई बोल्शेविक सरकार ने शीघ्र ही राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। फलतः ईरान की राजनीति में पुनः एक परिवर्तन आया। रूसी क्रांति और ईरान। रूस बोल्शेविक क्रांति के पश्चात प्रथम महायुद्ध से अलग हो गया तथा उसने मित्र राष्ट्र का गुप्त संधियों को प्रकट कर दिया। 24 नवंबर 1917 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा बोल्शेविक सरकार ने ईरान में प्राप्त अपने सभी विशेषाधिकारों का परित्याग कर दिया तथा देशभक्तों को जागरण का संदेश दिया। इसमें ईरानी देशभक्तों में नई आशा का संचार हुआ और उत्तरी ईरान में कुचिक खां के नेतृत्व में ईरानियों ने ब्रिटेन का सशस्त्र विरोध किया। नवंबर 1918 ईस्वी में महायुद्ध का अंत हो गया। अतः ईरानी सरकार ने एक घोषणा द्वारा दक्षिणी पर्शियन राइफल्स को एक विदेशी सेना घोषित कर दिया और उसे ईरान से हटने की मांग की, परंतु ब्रिटेन ईरान के हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। अतः 9 अगस्त 1919 ईस्वी को ब्रिटेन ईरान से एक समझौता किया और 20 लाख पाउंड का कर्ज देने एवं सैनिक और आर्थिक पुनर्संगठन करने का वादा किया। वास्तव में जनरल डिंकिसन के अधीन एक सैन्य मंडल एवं आर्मिटेज स्मिथ के अधीन एक वित्त मंडल ईरान भेजा भी गया। ब्रिटेन का उद्देश्य ईरान को अपने संरक्षण में लेने का था, परंतु मजलिस ने नई संधि की स्वीकृति नहीं दी तथा ये दोनों मंडल ब्रिटेन वापस लौट गए। इस काल में बोल्शेविक रूस ने ईरान के साथ मैत्रीभाव दिखलाया और दोनों देशों के बीच तक समझौता की बातचीत हुई। रूसी फौजें वास्तव में मई 1920 ईस्वी में क्रांतिकारी सेनापति डेनकिन की फौजों को भगाने के सिलसिले में कैस्पियन तटवर्ती ईरानी क्षेत्र गिलान पर कब्जा कर चुकी थी, परंतु दोनों में समझौते का वार्तालाप आरंभ हुआ और 26 फरवरी 1921 ईस्वी को दोनों के बीच एक संधि हुई। इसके अनुसार रूस ने ईरान से अपने सभी पुराने अधिकारों, रेलवे लाइनों पर एवं बैंकों का त्याग कर उन्हें ईरान के हवाले कर दिया। कैस्पियन सागर के मत्स्य धंधे में भी दोनों देशों का संयुक्त अधिकार हुआ। रूस का यह अधिकार मिला कि ईरान में विदेशी फौजों के आने पर रूस भी वहां अपनी फौज भेज सके। इस तरह से ईरान एवं नवोदित बोल्शेविक रूस में नया राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ और रूस ने ईरान में अपना खोया प्रभाव आंशिक रूप से पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु ब्रिटेन को अप्रैल 1922 ईस्वी तक प्रायः सभी फौजों को ईरान से वापस बुलाना पड़ा। इस प्रकार ईरान विदेशी चुंगल से आंशिक रूप से मुक्त हुआ, परंतु ईरान में पुनर्संगठन एवं मौलिक सुधारों की सख्त आवश्यकता थी और शाह में संगठन की योग्यता का नितांत अभाव था। ऐसी अवस्था में ईरान की कोशक सेना के सेनापति रजा खान ने हस्तक्षेप किया और तेहरान पर 2 फरवरी 1921 ईस्वी को कब्जा कर लिया। इस समय देश में जियाउद्दीन नामक एक उदारवादी नेता का काफी प्रभाव था, अतः रजा खान ने उससे मिलकर 21 फरवरी 1921 ईस्वी को एक नई सरकार की स्थापना की। रजा जियाउद्दीन गुटबंदी। ईरान की नवीन सरकार का प्रधानमंत्री जियाउद्दीन था तथा युद्ध मंत्री प्रधान सेनापति रजा खां था। जियाउद्दीन एक उदारवादी राजनीतिज्ञ था और एक जबरदस्त देशभक्त था, परंतु वास्तविक शक्ति रजा खां के हाथ में थी। रजा खां का जन्म 16 मार्च 1878 ईस्वी में मैज़दरान नामक प्रांत में हुआ था। यह आरंभ में रूसी अफसरों द्वारा संचालित ईरानी कोर्स ब्रिगेड का साधारण सैनिक था, लेकिन था महत्वाकांक्षी। प्रथम महायुद्ध के अंत में जब रूसी सेनापतियों का समर्थन खत्म हो गया तो इसने ब्रिटिश अधिकारियों से मिलकर 1920 ईस्वी में सभी रूसी सेनापतियों को पदच्युत करा दिया। तत्पश्चात सेना ब्रिटिश प्रभाव में आ गई। ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके निर्देशन और पुनः संगठन का भार रजा खां को सौंप दिया। वास्तव में ब्रिटिश अधिकारी रजा खां द्वारा ईरानी सेना प्रभाव रखना चाहते थे और उन्होंने तदर्थ रजा खां को हर प्रकार की सहायता दी। अतः जब जियाउद्दीन ने नवीन सरकार संगठन की योजना बनाई तो रजा खां का सहयोग प्राप्त कर लिया। अहमद शाह ईरान का शाह रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति इनके हाथ में आ गई। आरंभ में इन दोनों के बीच पूर्ण मतैक्य एवं सहयोग रहा। जियाउद्दीन ने देश में आंतरिक पुनर्गठन पर जोर दिया तथा विभिन्न आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार लाए। दूसरी ओर रजा खां ने सेना का पुनः संगठन किया और उसे शक्तिशाली बनाया। वैदेशिक नीति में भी सरकार ने रूस के साथ संधि की और ब्रिटेन की 1919 ईस्वी की संधि को रद्द कर दिया। इस प्रकार इस सरकार को आरंभ में अनेक प्रकार की सहायताएं प्राप्त हुई, परंतु जियाउद्दीन के आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों ने कुलीन वर्गों में उसके अनेक दुश्मन खड़े कर दिए। वह देश में भूमि के पुनर्वितरण के पक्ष में था। शीघ्र ही रजा खां से भी उसका मतभेद प्रारंभ हो गया। जियाउद्दीन के खिलाफ एक बवंडर सा खड़ा हो गया और मई 1921 ईस्वी में उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। अब शक्ति पूर्णतः रजा खां के हाथ में आ गई और अक्टूबर 1922 ईस्वी में उसने नए प्रधानमंत्री काउमुस सुल्तान को भी पदच्युत कर दिया और स्वयं प्रधानमंत्री का बागडोर संभाला। अब संपूर्ण ईरान पर उसका प्रभाव छा गया। मजलिस भी उसी के पक्ष में हो गई। अतः 31 अक्टूबर 1925 ईस्वी में मजलिस ने सुल्तान अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया और 13 दिसंबर 1925 ईस्वी को रजा खां को ही शहंशाह घोषित किया। 25 अप्रैल 1926 ईस्वी को रजा खां की ताजपोशी हुई और उसने अपने राजवंश का नाम पहलवी रखा। वह रजा शाह पहलवी के नाम से ईरान के मयूर सिंहासन पर आसीन हुआ। इस प्रकार खजार वंश का अंत हो गया एवं पहलवी वंश का आरंभ हुआ। रजा शाह ने देश में शीघ्र ही मौलिक सुधारों का कार्यक्रम अपनाया जो कि मुस्तफा कमाल के सुधारों के अनुरूप सिद्ध हुआ। रजा शाह पहलवी 1925 से 1941 ईस्वी। समस्याएं। जिस समय रजा शाह ने शहंशाह की हैसियत से शासन का कार्यभार संभाला, उस समय ईरान आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं से चातुर्विध आबद्ध था। ईरान में आंतरिक अराजकता फैली थी। सरकारी कोष खाली पड़ गया था। देश में मुल्लाओं और मौलवियों का बोलबाला था जो कि प्रत्येक सुधार का विरोध करते थे। देश में शिक्षा का अभाव था। आधुनिक सभ्यता का प्रसार बिल्कुल नहीं था। इसके अतिरिक्त आबादी का पांचवां हिस्सा खानाबदोश कबीलों का था जो दक्षिणी ईरान में भरे हुए थे। खुजिस्तान में अंगल ईरानी तेल कंपनी के खूब भरे थे, परंतु ईरान के अपेक्षित लाभ नहीं होता था। वैदेशिक मामलों में क्षेत्र में भी ईरान को अपना स्वतंत्र स्थान कायम करना था। अब तक ईरान विशाल देशों की शतरंगी चाल में मोहरे के सदृश था तथा उन्हीं के द्वारा ईरान की नीति निर्धारित होती थी। ऐसी अवस्था में ईरान की स्वतंत्रता और विदेशी प्रभाव से मुक्ति एवं आधुनिकीकरण रजा शाह के प्रमुख उद्देश्य हो गए। उसने पाश्चात्य देशों का भ्रमण नहीं किया था, परंतु वह पड़ोसी टर्की और रूस में क्रांतिकारी सुधार कर रहा था। यही नहीं, अफगानिस्तान भी वह सुधार की ओर कदम बढ़ा चुका था। अतः रजा शाह ने भी देश के पुनः संगठन के हेतु क्रांतिकारी कदम उठाए। राजनीतिक पुनर्गठन। सर्वप्रथम रजा शाह ने देश में राजनीतिक शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाया। तदर्थ उसने सेना को संगठित किया। इसके बाद उसने कुशिक खां के विद्रोह का दमन किया और खुरासान एवं अजरबैजान के विद्रोहियों को कुचल दिया। इसके साथ ही उसने खानाबदोश जातियों पर भी हमला किया, उन्हें नियंत्रण में लाया। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम में मोहम्मरा के शेख खजल को भी उसने अधीनस्थ किया। इसके राज्य की सीमाएं दक्षिणी ईरान में घुसी थी तथा इसको ब्रिटिश समर्थन प्राप्त था। अतः इसे अधीनस्थ कर रजा शाह ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। इस प्रकार 1926 ईस्वी तक वह आंतरिक अशांति को खत्म करने में सफल हुआ तथा उसकी शक्ति निष्कंटक हो गई। इसके साथ उसने प्रशासनिक सुधार भी किए। 1972 ईस्वी में उसने फ्रेंच न्याय व्यवस्था लागू कर दी और धार्मिक कचहरियों की दीवानी शक्ति का अंत कर दिया। 1928 ईस्वी में उसने विदेशियों के बाह्य क्षेत्रीय अधिकारों को खत्म कर दिया। मार्च 1935 ईस्वी में उसने देश का नाम पर्सिया के स्थान पर ईरान रखा। इस प्रकार ईरान में राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो गई। आर्थिक सुधार। रजा शाह ने आर्थिक पुनर्गठन को भी पूर्ण महत्व दिया। सर्वप्रथम उसने आर्थर चेस्टर मिल्स पाव नामक एक अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ को 1922 ईस्वी में आमंत्रित किया। यह 1927 ईस्वी तक ईरान में रहा और इसके कार्यों के फलस्वरूप ईरान को सुनिश्चित आय मिलती रही। इसके हटने के बाद इस पर एक जर्मन डॉक्टर लिडन ब्लॉथ की नियुक्ति हुई। इसने ईरान के एक राष्ट्रीय बैंक का संगठन किया जिसके अधीन नोट छापने का अधिकार दिया गया। जर्मनी की मदद से ईरान में कई उद्योग स्थापित किए गए तथा 1931 ईस्वी में सरकार ने वैदेशिक व्यापार पर भी अपना एकाधिकार स्थापित किया। 1935 ईस्वी में रजाशाह ने एंग्लो ईरानी तेल कंपनी की सुविधाओं का भी अंत कर दिया, परंतु 1933 ईस्वी में ब्रिटेन से एक समझौते के अनुसार अवधि 7 साल तक बढ़ा दी गई और ईरान की रॉयल्टी में वृद्धि कर दी गई। औद्योगीकरण को प्रश्रय देने के लिए रजाशाह ने व्यक्तिगत पूंजी लगाई और दूसरे को भी उत्साहित किया। 1938 ईस्वी में एक फैक्ट्री एक्ट द्वारा श्रमिक कल्याण की भी व्यवस्था की गई। उद्योग के लिए यातायात का विकास अनिवार्य था। इसके लिए 1927 ईस्वी में तेहरान को ईरान की खाड़ी एवं कैस्पियन से संबंध कराने हेतु ट्रांस ईरानियन रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य आरंभ कराया, जिसका अंत 1939 ईस्वी में हुआ। इसके साथ ही शाह ने सड़क निर्माण के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया और देश के सभी प्रमुख स्थानों पर एक दूसरे से संबंध स्थापित करा दिए। 1927 ईस्वी में जंकर कंपनी को ईरान के प्रमुख शहरों में डाक एवं यात्रा की व्यवस्था का उसने भार दिया तथा 1928 ईस्वी में एक ब्रिटिश संस्था का इराक और भारत के बीच ईरानी तट पर वायुसेना का अधिकार दिया। तत्पश्चात 1931 ईस्वी में उसने इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ कंपनी को सरकारी प्रबंध में ले लिया। इसी वर्ष एक कानून द्वारा उसने विदेशियों को कृषि योग्य भूमि पर अधिकार करने की मनाही कर दी। इसके साथ ही इसने विदेश व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया तथा नए उद्योग स्थापित किए। इस तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था एक नए धरातल पर स्थापित हो गई। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार। रजाशाह देश में सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक विकास ही नहीं चाहता था, अपितु वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन लाना चाहता था। वास्तव में ईरान में मुल्लाओं का बहुत ही प्रभाव था तथा धर्म और समाज में परिवर्तन लाना आसान नहीं था। अतः शाह ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। सर्वप्रथम उसने देश में जागृति लाने के लिए शिक्षा पर जोर दिया। 1928 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और भारी संख्या में शिक्षणालय खोले गए। 1930 ईस्वी में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से अनिवार्य धार्मिक शिक्षा को हटा दिया गया। 1935 ईस्वी में एक कानून द्वारा विदेशियों द्वारा संचालित शिक्षणालयों को बंद कर दिया गया, फलतः मिशनरी विश्वविद्यालयों का अंत हो गया। इसके साथ ही 1934 ईस्वी में तेहरान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1935 ईस्वी में ईरानी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और उसे भाषा सुधार का कार्य दिया गया। 1940 ईस्वी में सरकारी रेडियो का भी उद्घाटन हुआ। पत्र पत्रिकाओं को सरकारी नियंत्रण में रखा गया। इसके अतिरिक्त इस काल में व्यायाम, खेलकूद, स्काउट आंदोलन पर भी जोर दिया गया तथा पाश्चात्य वेशभूषा एवं वस्त्र को कानूनी स्थान दिया गया। 1928 ईस्वी में ही पूर्वी वेशभूषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यूरोपीय हैट का प्रचलन आरंभ कर दिया गया। 1935 ईस्वी में बुर्के का अंत कर दिया गया तथा स्त्रियों को भी पाश्चात्य वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा। स्त्रियों के लिए सार्वजनिक पदों के द्वार खोल दिए गए एवं तलाक के मामलों में पुरुष के अधिकार कम कर दिए गए। इस प्रकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से भी रजाशाह मौलिक परिवर्तन लाया तथा उन्हें कानूनी रूप देकर दृढ़ता से पालन कराया। इस तरह ईरानी साम्राज्य ने एक पिछड़े पूर्वी स्वरूप को परिवर्तित कर पाश्चात्य कलेवर धारण कर लिया। वैदेशिक नीति। रजाशाह पहलवी ने वैदेशिक क्षेत्र में शांति एवं मित्रता की नीति अपनाई। वस्तुतः उसके पूर्ववर्ती ईरानी शासकों ने युद्धोपरांत शांति सम्मेलन में विशाल रूसी, काकेशस, इराकी, कुर्दिस्तान एवं ब्रिटिश अधिकृत बहरीन पर दावा पेश किया था, परंतु रजाशाह ने इस दावे को प्रायः भुला दिया एवं निकटवर्ती और दूरवर्ती देशों से मैत्री संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। इसके लिए उसने पड़ोसियों से मित्रता स्थापित की। पड़ोसी टर्की एवं अफगानिस्तान से ईरान का पुराना वैर चला आ रहा था। अतः 22 अप्रैल 1927 ईस्वी को ईरान, टर्की एवं अफगानिस्तान के बीच एक मैत्री संधि हुई। इस संधि को रूस का भी आशीर्वाद प्राप्त था, परंतु कुर्दों के मामले को लेकर टर्की एवं ईरान में मतभेद कायम रहा। 1930 ईस्वी में कुर्द विद्रोह के कारण यह और भी प्रज्वलित हुआ। फिर भी दोनों देशों के बीच वार्तालाप जारी रहा। वास्तव में मुस्तफा कमाल भी शांति समर्थक था। अतः 1932 ईस्वी में ईरान ने इराक एवं टर्की से सीमा संबंधी समस्या पर अन्य देशों से समझौता कर लिया। इसी साल इराक के शाह फैसल ने ईरान की यात्रा भी की। रजा शाह ने भी 1934 ईस्वी में टर्की की यात्रा की, जिससे दोनों देशों के संबंध और भी अच्छे हो गए। अंत में सन 1937 ईस्वी में ईरान, टर्की, इराक तथा अफगानिस्तान के बीच सादाबाद की संधि हुई, जिससे इन देशों में गठबंधन स्थापित हुआ। इस संधि द्वारा इन्होंने वैदेशिक क्षेत्र में अपने सहयोग एवं परामर्श की नीति अपनाई और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का निश्चय किया। इस प्रकार पूर्वी मित्र संघ की उत्पत्ति हुई। इस संधि के अनुसार इन देशों ने आपसी शांति, परामर्श एवं सहयोग का संबंध स्थापित किया, परंतु ईरान ने अरब समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई। वास्तव में सीरिया, पैलेस्टाइन आदि पराधीन थे तथा उनकी स्वतंत्रता नीति नहीं थी, और मिस्र तथा सऊदी अरब काफ़ी दूर थे। अतः इनकी समस्याओं से ईरान अलग रहा तथा उसने पाश्चात्य देशों से अपना संबंध विकसित करने का प्रयास किया। रजा शाह और पाश्चात्य देश। पूर्वी देशों के साथ साथ पाश्चात्य देशों के साथ भी रजा शाह ने शांति संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। वास्तव में ईरान में ब्रिटेन एवं रूस का परंपरागत स्वार्थ बना हुआ था। ब्रिटेन की आंग्ल ईरानी तेल कंपनी ने खुजिस्तान में अपना कारखाना स्थापित किया था, जिसके कारण ईरान से उसका अभिन्न संबंध था। इसके साथ ही भारतीय साम्राज्य की निकटता एवं ईरान की खाड़ी पर ब्रिटिश आधिपत्य ने ब्रिटिश स्वार्थों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। युद्धोपरांत इराक में भी ब्रिटिश मैंडेट कायम हो गया था, अतः उस दिशा में भी ईरान ब्रिटेन का पड़ोसी था। दूसरी तरफ रूस भी 1921 ईस्वी की संधि द्वारा ईरान में हस्तक्षेप करने का कम अधिकारी था तथा कैस्पियन सागर में दोनों का संयुक्त नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त पड़ोसी होने से रूस के साथ एक निश्चित संबंध स्थापित करना आवश्यक था, और उसने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने की योजना बनाई। लेकिन अंततः इन दोनों देशों से संबंध कटुतर होते गए और इतिहास की पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर ईरान पुनः एक तृतीय देश जर्मनी की ओर मुड़ा। ब्रिटेन के साथ संबंध। प्रथमतः ब्रिटेन के साथ 1927 ईस्वी में बहरीन द्वीप को लेकर झगड़ा आरंभ हुआ तथा दोनों देशों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए। बहरीन पर दावा पेश करने के अतिरिक्त रजा शाह ने ब्रिटेन रक्षित नोहम्मरा के शेख खजल को भी अपने अधीन कर लिया था और ब्रिटिश वायुयानों की ईरान के तट पर से उड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही ब्रिटिश नागरिकों की बाह्य क्षेत्रीय सत्ता का अंत कर दिया और रजा शाह ने इराक में ब्रिटिश मैंडेट को भी मान्यता नहीं दी। तटकर को लेकर दोनों देशों में वाद विवाद हुआ। ब्रिटेन ने ईरान के दावे को नामंजूर कर दिया और युद्धकाल में दक्षिणी पर्शियन राइफल्स के संगठन संबंधी खर्चों की मांग रखी और ब्रिटिश नागरिकों के लिए पृथक न्याय व्यवस्था एवं सुरक्षा पर जोर दिया। परंतु इन दोनों देशों के बीच वार्तालाप हुआ और अंत में 16 मई 1928 ईस्वी के आंग्ल ईरानी संधि हुई, जिसने दोनों के बीच सामान्य संगठन संबंध स्थापित कर लिए। इसके अनुसार ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया और ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज एवं ईरान से वार्तालाप की भूमिका निर्मित की गई। अतः दिसंबर 1928 ईस्वी के एक समझौते के अनुसार ब्रिटिश वायुयानों को ईरानी तट पर से उड़ने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार दोनों देशों के बीच विवाद का अंत हुआ। परंतु 1932 ईस्वी में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ। आंग्ल ईरानी तेल कंपनी की बढ़ती आय में हिस्सा बांटने के लिए रजा शाह ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया। इससे दोनों राष्ट्रों के बीच वैमनस्य कायम हुआ और मामला राष्ट्रसंघ में पेश किया गया। परंतु इन दोनों ने पारस्परिक वार्तालाप द्वारा समस्या का समाधान कर लिया और 1933 ईस्वी में दोनों देशों के बीच एक नई संधि हुई, जिसके अनुसार ईरान को आय का अधिकांश भाग प्राप्त होने लगा और कंपनी के तेल उत्पादन संबंधी अधिकार की अवधि 8 साल के लिए बढ़ा दी गई 60 साल के लिए बढ़ा दी गई। इस प्रकार इस समस्या का अंत और द्वितीय महायुद्ध के आरंभ तक दोनों देशों के संबंध प्रायः शांतिपूर्ण बने रहे। 1933 ईस्वी का समझौता रजा शाह की महान कूटनीतिक सफलता सिद्ध हुई और उसने काफी अंश में अपने देश को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त किया। रूस ईरान संबंध। युद्धोपरांत रूस एवं ईरान के संबंध का आधार 1921 की संधि थी। रूस ने जारकालीन अधिकारों का अंत कर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया था, परंतु यह कायम नहीं रह सका। सोवियत फौजों ने कैस्पियन के तट पर मिलान पर कब्जा कर लिया था तथा कुचिक खां का विद्रोह साम्यवाद समर्थक था। रूस ने साम्यवाद को विश्व में प्रचारार्थ अपने दूत चारों ओर भेजे थे तथा ईरान में भी 1921 ईस्वी में साम्यवादी दल संगठित हो गया था। इसी काल में खुरासान तथा अजरबैजान में विद्रोह हुए जिसमें रूस का हाथ परिलक्षित हुआ। अतः संबंध में कटुता बढ़ने लगी और रजा शाह ने साम्यवादियों का कठोर रूप से दमन किया। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारणों से भी वैमनस्य में वृद्धि हुई। 1921 की संधि द्वारा ईरान किसी भी बाह्य देश को रूस द्वारा परित्यक्त अधिकार नहीं दे सकता था। अतः 1922 ईस्वी में जब उत्तरी ईरान में ब्रिटेन एवं अमेरिका की आर्थिक एवं खनिज संबंधी सुविधाएं स्वीकृत की गई तो रूस ने उसका जबरदस्त विरोध किया और 1924 ईस्वी में वे सभी सुविधाएं रद्द कर दी गईं। ईरान सोवियत व्यापार का कारण भी कई समस्याएं उठ खड़ी हुई। रूस में ईरानी पदार्थों का सर्वाधिक निर्यात होता था, अतः रूस व्यापारिक बहिष्कार द्वारा ईरान में आर्थिक समस्या उत्पन्न कर सकता था। वास्तव में 1926 ईस्वी में कैस्पियन सागर के मत्स्य उद्योग संबंधी विवाद होने पर रूस ने ईरान से आयात बंद कर दिया। अंत में ईरान को झुकना पड़ा और 1927 ईस्वी में एक नई संधि हुई जिसमें रूसी मांगों को स्वीकृत किया गया। रूस ईरान के निर्यात को ही नहीं प्रभावित करता था बल्कि अवसर प्राप्त होने पर यह अपने मालों के बहुल्य से ईरानी बाजार को पाट भी सकता था। इस तरह आर्थिक क्षेत्र में ईरान रूस पर अवलंबित था। इसे दूर करने के लिए 1931 ईस्वी में रजा शाह ने वैदेशिक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार कायम किया और जर्मनी से व्यापारिक संबंध विकसित किए। परिणामतः द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ तक जर्मनी ने ईरानी व्यापार में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। वास्तव में रूस के साथ ईरान का संबंध उत्तरोत्तर बिगड़ता गया। ईरान के साम्यवादी रजा शाह के लिए एक अलग समस्या खड़ा करता जा रहे थे और सादाबाद की संधि को भी रूस संदेह की दृष्टि से देख रहा था। इस तरह 1939 ईस्वी तक रूस और ईरान में सौहार्दपूर्ण भावना नाम मात्र की रह गई थी। जर्मन ईरानी संबंध। ब्रिटेन एवं रूस के परंपरागत प्रभाव से ईरान को मुक्त करने के हेतु रजा शाह ने एक तृतीय देश जर्मनी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आरंभ में इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित करने की चेष्टा की और अमेरिकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया एवं उन्हें आर्थिक सुविधाएं प्रदान की, परंतु अमेरिका की एकांत प्रियता की नीति के कारण इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जर्मनी ने प्रथम महायुद्ध में ईरान में काफी दिलचस्पी ली थी। जर्मनी का उद्योग काफी विकसित था और ईरान के आर्थिक विकास में जर्मनी वास्तविक सहायता पहुंचा सकता था। दूरवर्ती देश होने के कारण जर्मनी रूस अथवा ब्रिटेन की तरह राजनीतिक खतरा भी उपस्थित नहीं कर सकता था। अतः 1927 ईस्वी में ही जर्मन विशेषज्ञ लिंडन ब्लॉट की नियुक्ति हुई और जर्मनी से इंजीनियरों एवं टेक्नीशियनों की वारसी आ गई। हिटलर के उदय के बाद इस प्रक्रिया में और भी तेजी आई और ईरानी उद्योग, यातायात, कृषि एवं भवन निर्माण में जर्मनी का अपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी से विकास हुआ और 1935 ईस्वी में जर्मन अर्थ जादूगर शाख्त ने ईरान की यात्रा की और ईरान से भी कई उच्चाधिकारी जर्मनी लाए। 1937 ईस्वी में बर्लिन एवं तेहरान के बीच वायु सेवा आरंभ की गई। 1939 ईस्वी में ट्रांस ईरानियन रेलवे जर्मन इंजीनियरों की मदद से निर्मित हो गया। 1939 ईस्वी तक ईरान का 41% व्यापार जर्मनी से होने लगा एवं ईरान में जर्मनों की संख्या 2000 से अधिक हो गई। इससे ब्रिटिश एवं रूसी प्रभाव को काफी क्षति पहुंची एवं द्वितीय महायुद्ध से आरंभ के मध्य पूर्व में ईरान जर्मनी का प्रमुख केंद्र बन गया। द्वितीय महायुद्ध और रजाशाह का पतन। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब द्वितीय महायुद्ध का आरंभ हुआ तो ईरान ने अपनी तटस्थता घोषित कर दी। इस काल में रूस एवं जर्मनी में सहयोग चल रहा था, अतः ईरान का जर्मनी के साथ व्यापार और भी बढ़ चला। परंतु जून 1941 ईस्वी में जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो स्थिति बदल गई। इस बार इतिहास की पुनरावृत्ति हुई और तृतीय दुश्मन के सामने रूस एवं ब्रिटेन ने पुनः अपना सहयोग कायम कर लिया। रूस को युद्ध सामग्री पहुंचाने का सर्वाधिक सुगम रास्ता ईरान होकर ही था, परंतु ईरान में जर्मन भरे पड़े थे। परिणामतः सोवियत रूस तथा ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से जून एवं अगस्त 1941 ईस्वी में ईरान से जर्मनों को बहिष्कृत करने को कहा। रजाशाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फलतः 25 अगस्त 1941 ईस्वी को ब्रिटिश एवं रूसी फौजों ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही सारे ईरान पर इनका अधिकार हो गया और इसका विभाजन कर दिया गया। रूस ने 5 उत्तरी ईरानी प्रांतों को अपने अधिकार में रखा और ब्रिटेन ने दक्षिणी ईरान पर कब्जा कर लिया। बीच में ईरान को तटस्थ रखा गया। रजाशाह पहलवी ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास एक अपील भेजी, परंतु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और चारों ओर से रजाशाह पर बौछारें होने लगी। फलतः 16 सितंबर 1941 ईस्वी को उसने पुत्र मोहम्मद रजा पहलवी के पक्ष में पद त्याग कर दिया और उसी दिन मजलिस ने नए शाह के पद ग्रहण को स्वीकृत कर लिया। रजाशाह एक ब्रिटिश जहाज पर पहले मॉरिशस द्वीप ले जाया गया और अंत में 1944 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में उसकी मौत हो गई। रजाशाह का मूल्यांकन। रजाशाह पहलवी के अंतिम दिनों में ब्रिटिश एवं रूसी प्रचार ने उसे एक उन्मत्त तानाशाह के रूप में विश्व के सम्मुख पेश किया, जो सिर्फ खून खराबी एवं दमन के कारण शाह बना हुआ था। वास्तव में उसने अपने विपक्षियों का क्रूरता से दमन किया था तथा सारे देश में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की संख्या सीमित कर उन्हें पूर्ण नियंत्रण में रखा था। इसके साथ ही उसने देश की कृषि को उपेक्षित रखा था एवं इस क्षोभ में कोई मौलिक सुधार नहीं हुआ था। राजनीति के क्षेत्र में जनतंत्र का भी कोई विकास नहीं हो पाया था और जर्मन प्रभाव के कारण ईरान फासिस्ट होता जा रहा था। इसके अतिरिक्त रजाशाह में व्यक्तिगत स्वार्थ भी था। ईरान के व्यवसाय में उसका काफी हिस्सा था और उसके पास अपना विशाल कृषि क्षेत्र भी था। इस तरह रजाशाह के विपक्ष में उसके कई दोष एवं असफलताएं पेश की जाती है, जिसमें उसकी राजनीतिक अदूरदर्शिता भी शामिल है, जिसके कारण रूस एवं ब्रिटेन उसके दुश्मन हो गए एवं वह पतन के गर्त में जा गिरा। फिर भी रजाशाह ने ईरान को जो भी रूप परिवर्तन किया उसके लिए ईरान उसका चिरऋणी रहेगा। प्रथमतः राजनीतिक क्षेत्र में उसने ईरान को न सिर्फ रूस एवं ब्रिटेन के अनुचित प्रभाव से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे एक निश्चित राज्य, क्षेत्रीय सीमा एवं मित्र संघ प्रदान किया। आर्थिक क्षेत्र में उसने ईरान को नए नए उद्योग, विशाल रेलवे लाइन एवं यातायात के हेतु सड़कों और वायुसेनाओं की व्यवस्था की। इस तरह से ईरान में आर्थिक स्वाधीनता की नींव पड़ी। सामाजिक क्षेत्र में भी उसने पर्दे का अंत किया तथा धर्म के प्रभाव को न्यून किया। शिक्षा के समुचित विकास द्वारा उसने ईरान में आधुनिक सभ्यता का प्रसार किया। वास्तव में उसकी तुलना उसके समकालीन कमाल से की जाती है। कमाल ने भी अपने देश में पाश्चात्य वेशभूषा एवं शिक्षा का प्रचार किया तथा धर्म प्रभाव का अंत किया। दोनों वस्तुतः तानाशाह थे और सैन्याधिकारी भी थे। दोनों ने आंतरिक शासन स्थापित की और शांतिपूर्ण वैदेशिक संबंध भी स्थापित किए। साथ ही दोनों ने ब्रिटेन एवं रूसी कूटनीति का सामना कर राष्ट्रीय वैदेशिक संबंध भी स्थापित किए। साथ ही दोनों ने ब्रिटिश एवं रूसी कूटनीति का सामना कर राष्ट्रीय स्वाधीनता को सर्वोपरि रखा। दोनों ने आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक उद्भव के लिए उद्योगीकरण पर जोर दिया तथा पाश्चात्य सभ्यता का सहारा लिया, परंतु इन समानताओं के साथ कुछ विभेद भी दृष्टिगोचर होता है। मुस्तफा कमाल को पाश्चात्य राजनीति एवं सभ्यता का व्यक्तिगत ज्ञान था तथा उसकी दृष्टि रजाशाह की तरह संकीर्ण नहीं थी। मुस्तफा कमाल का टर्की यूरोप से निकट एवं अपेक्षाकृत अधिक उन्नत देश था तथा वहां धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने में सफल रहा। राजशाह ने धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने अथवा लिपि में सुधार करने का साहस नहीं किया। इसके अतिरिक्त मुस्तफा कमाल को व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ नहीं था, अतः उसने टर्की की काया पलट कर दी और अतातुर्की उपाधि से विभूषित हुआ। दूसरी तरफ राजशाह की अपनी पूंजी अनेक व्यवसायों में लगी थी और वह निस्वार्थ नहीं था। उसने अपने राजवंश की नींव डाली जबकि मुस्तफा कमाल ने गणतंत्र की स्थापना की थी। अंत में मुस्तफा कमाल ने किसी विशेष राष्ट्र को अपना दुश्मन नहीं बनाया, जबकि राजशाह ने ब्रिटेन एवं रूस के साथ ईरान के संबंधों को निरंतर कटु बनाया, जिसके कारण वह पतन के गर्त में जा गिरा।